ये रेडियो नेपाल है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा में इंजीनियरिंग परिषद प्रथम संशोधन विधेयक पारित। नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सचेतक पद पर चित्रलेखा यादव और सचेतक पद पर मीन बहादुर विश्वकर्मा नियुक्त और रनिल विक्रमासिंघे बने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने दो विधेयकों को पारित किया। बैठक ने नेपाल इंजीनियरिंग परिषद प्रथम संशोधन विधेयक 2076 और ज्येष्ठ नागरिक प्रथम संशोधन विधेयक 2076 को सर्वसम्मति से पारित किया। इसी तरह आज की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति और उद्योग तथा वाणिज्य और श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया गया। इससे पूर्व बैठक में उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतम ने राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण संबंधी संदेश पढ़कर सुनाया था। बैठक के विशेष समय में सांसदों ने जन सरोकार के विषय में अपनी अपनी धारणा रखते हुए उन विषयों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने मदन भंडारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक 2079 को सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौड़ेल ने मदन भंडारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक 2079 को पारित करने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बैठक में विधेयक के ऊपर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री पौड़ेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को विषयगत विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ मदन भंडारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक लाया गया है। मंत्री पौड़ेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को समय अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक और अनुसंधानात्मक क्षेत्र के रूप में विकास करने के काम को आगे बढ़ाया गया है। इससे पूर्व आज की बैठक में सांसदों ने व्यवहार में क्रियान्वयन होने के हिसाब से कानून बनाने की बात पर जोर दिया था। बैठक के विशेष समय में सांसदों ने अपनी अपनी धारणा रखी। राष्ट्रसभा की अगली बैठक श्रावण 9 गते सोमवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस संसदीय दल के नेता शेर बहादुर देववा ने संसदीय दल के प्रमुख सचेतक पद पर चित्रलेखा यादव और सचेतक पद पर मीन बहादुर विश्वकर्मा को नियुक्त किया है। ये जानकारी कांग्रेस के सचेतक मीन बहादुर विश्वकर्मा ने दी है। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा कि दूसरों के ऊपर दोष लगाने की बजाय खुद की कमी कमजोरियों पर विचार करते हुए जनता के लिए काम करने की जरूरत है। आज काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का जनता के साथ गहरा संबंध होना चाहिए। उन्होंने स्थानीय लोगों के परामर्श में परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया। पत्रकार के एक सवाल पर महासचिव पोखरेल ने कहा कि संघीयता को खारिज करने के पक्ष में एमआलए बिल्कुल भी नहीं है। नेकपा एमआलए के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि उत्पादों और उत्पादन के साधनों पर सबकी समानुपातिक पहुंच होनी चाहिए। अध्यक्ष ओली ने कहा कि उत्पाद और उत्पादन के साधनों की पहुंच का समानुपातिक वितरण होने से मानव समाज सुंदर और सुखी होगा। आज नेकपा एमआलए वागमती प्रदेश कमेटी द्वारा काठमांडू में आयोजित प्रदेश स्तरीय सभा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान अध्यक्ष ओली ने ये बात कही। आगे उन्होंने कहा कि जनता के जीवन स्तर में सुधार के लिए एमआलए ने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के नारे को आगे बढ़ाया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता के लिए दलों का शुद्धिकरण आवश्यक है। नेकपा एमाले प्रचार विभाग द्वारा आज काठमांडू में आयोजित अंतरक्रिया में महासचिव पोखरेल ने कहा कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी मजबूत नहीं होगी तब तक देश को नीतिगत नेतृत्व प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों पर सत्ता स्वार्थ हावी होने से सरकार दिशाहीन होने के नतीजे पर पहुंची है। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने कहा कि वैशाख में हुए स्थानीय चुनाव के लोकतंत्र और संहिता को मजबूत किया है। निर्वाचन आयोग और आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल द्वारा आयोजित स्थानीय तह चुनाव पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुति और समीक्षा कार्यक्रम में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया ने ये बात कही। परराष्ट्र मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र संघ की 77वीं महासभा में नेपाल की ओर से होने वाले उच्च स्तरीय सहभागिता के लिए गृह कार्य शुरू कर दिया है। परराष्ट्र मंत्रालय में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय के प्रवक्ता सेवा लम्साल ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री शेख बहादुर देववा के अमेरिका भ्रमण के विषय में पूछे गए सवाल के जवाब में प्रवक्ता लम्साल ने कहा कि इस विषय में दोनों पक्षों की अनुकूलता के हिसाब से भ्रमण के विषय में जानकारी दी जाएगी। इसी तरह नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दाल प्रचंड के भारत भ्रमण के विषय में प्रवक्ता लम्साल ने स्पष्ट किया कि प्रचंड का यह भ्रमण राजनीतिक दल के निमंत्रण पर हुआ है और इस पर राष्ट्र मंत्रालय ने केवल सहजकर्ता की भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दान बहादुर तामाङ को दक्षिण अफ्रीका के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत पर नियुक्त किया है। ये बात राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता सागर आचार्य द्वारा आज जारी किए गए बयान में उल्लिखित है। आज देशभर में कोरोना के 391 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 46 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी है। इसी तरह आज 121,515 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तप बहादुर मगर ने कहा कि कारागार में रह रहे कैदियों की अवस्था काफी जटिल है। मानवाधिकार एवं कैदी बंदी न्यायिक सरोकार मंच के 9वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष मगर ने बताया कि कारागार में रह रहे कैदियों के अवस्था के बारे में आयोग निरंतर जानकारी लेता रहता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कृष्ण कुमारी पौड़ेल खतीवड़ा ने कहा कि संविधान और कानून में महिला अधिकार के विषय में काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन कारागार में रह महिला कैदियों की अवस्था दयनीय है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका के सांसदों ने रनिल विक्रमासिंघे को राष्ट्रपति चुना है। रनिल विक्रमासिंघे को 134 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी दलस अलापेरुमा को 82 वोट मिले। कुल 223 सांसदों ने वोट किया है, जबकि दो सांसद वोटिंग से अनुपस्थित रहे। 223 वोट में से 219 वोट को वैध माना गया है, जबकि 4 वोट अमान्य करार दिए गए। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद संसद को संबोधित करते हुए रनिल विक्रमासिंघे ने सभी पार्टियों से मिलकर काम करने की अपील की है और श्रीलंका को इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए कहा है। बता दें कि गोटबाया राजपक्षे के श्रीलंका से भागने और इस्तीफा देने के बाद रनिल विक्रमासिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। रनिल विक्रमासिंघे का कार्यकाल नवम्बर 2024 में खत्म होगा। वे गोटाबाया राजपक्षे के बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेंगे। इससे पहले गोटाबाया के भाई महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी और वे तब से कहां गायब हैं कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। राष्ट्रपति भवन पर पिछले हफ्ते शनिवार को श्रीलंका के आम लोगों ने धावा बोल दिया था और अपने नियंत्रण में ले लिया था। हालांकि प्रधानमंत्री रनिल विक्रमासिंघे भी श्रीलंका में अलोकप्रिय हैं और उनके निजी आवास में भी आक्रोशित भीड़ ने आग लगा दी थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस प्रसारण के मुख्य समाचार एक बार फिर से।